ओम शांति। किसी विशेष सेंटर से हैं? अच्छा, मणिनगर सब जोन के हैं। कौन बैठी? जय श्री। अच्छा, अब मुंह सबके बंद है ना, तो पता नहीं चलता कौन बैठा है। बाबा तो कर नहीं पाया था मुंह बंद, अब कोरोना में तो कर दिया। अच्छा किया या नहीं? अब युग परिवर्तन हमें कहना नहीं पड़ता है ज्यादा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मुझे तो पहले से ही आभास था, और मैं बहुत बार क्लासेज में कहा, पता नहीं क्यों कहा ये, मैं अब सोचता हूँ कि 2020 से 30 के बीच में कम से कम 10 बड़ी घटनाएं होंगी और युग बदल जाएगा। कोरोना का तो किसी को ख्याल नहीं था। तो पहला प्रश्न ये जो मुझे दिख रहा है, मैंने चश्मा मंगाया पढ़ने वाला, वैसे मैंने कहा इसी में क्लास हो जाए। परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन को स्वीकार करना सूक्ष्म चीज है, लेकिन बहुत गहरी भी नहीं है। बदलेगा सब कुछ, बदलना ही है, क्योंकि बदलने का समय आ गया है। रात पूरी हो रही है, प्रभात चल रही है, दिन तो निकलेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो परिवर्तन होंगे उन्हें स्वीकार करेंगे। ये क्यों हो रहा है क्वेश्चन नहीं, समय की गति के साथ हमें चलना सीखना होगा। जैसे हम देख रहे हैं ना, अभी देखो कोरोना को 8 मास हुए, मुश्किल से 7 मास 8, लोगों ने सभी ने, अब देखो गहराई से अगर आप चिंतन करें तो अपनी उन्नति के अलग अलग मार्ग निकाल लिए। हमारी सेवाओं के मार्ग निकल गए ऑनलाइन, इतनी संख्या हम नहीं बढ़ा सकते थे जैसे चल रहा था। जैसे ये खेल खत्म होगा और सेंटर खुलेंगे तो बहुत लोगों का आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, संसार में भी लोगों ने कमाने के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रहे हैं, ढूंढ लिए हैं बहुतों ने। और ये मनुष्य की नेचर है कि जैसा समय परिस्थिति होती है वो अपना मार्ग निकाल लेता है। किसी को समय लगता है, कोई जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन अब ऐसा समय भी आएगा और ऐसी घटनाएं होंगी जहां किसी को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें। हर व्यक्ति निराधार होगा, ये बाबा के महावाक्य थे बहुत पहले, तब से ही मैं नोट किए हुए, 40 साल पहले के होंगे। हर आत्मा निराधार हो जाएगी, सभी आधार निकल जाएंगे। सुखी कौन रहेंगे? जिनकी स्थिति श्रेष्ठ होगी। न किसी को धन काम आएगा, न जन संबंध उस तरह मदद नहीं कर पाएंगे जिस तरह की मदद मनुष्य चाहेगा। धन बहुत होगा किसी के पास, लेकिन पेट दर्द ही हो गया बहुत ज्यादा, इसलिए कह रहा हूँ। एक माता का फोन आ रहा था अभी, उसको पपीता खाना मना था, उसने खा लिया, हाल पेट फूल गया है, दर्द बेतहाशा हो गया है। बहुत साहूकार हैं लोग, क्या करें, अब पैसे पेट दर्द को तो नहीं हटा सकते। धन जन काम क्या आएगा बोलो? स्व स्थिति में एक दो चीज, अपने पुण्य कर्म, अपने पुण्य कर्म काम आएंगे मनुष्य को। सच्चे साथी मनुष्य के पुण्य कर्म। लेकिन कलयुग में चलते चलते बहुत लोग पाप की गति को पहचान नहीं रहे हैं, पाप कर रहे हैं पर उन्हें पता नहीं कि वो पाप कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे देता हूं, एक अभी की बात है, आपके ही गुजरात में, आपके नजदीक में एक दो माताएं ज्ञान में चलती हैं, दोनों बहनें हैं और एक ही घर में हैं। बड़ी के लड़के ने सुसाइड किया अभी 8 दिन पहले, 28 साल का था। मैंने पूछा क्या हुआ था अभी, क्योंकि ये परिवार वाले इन दोनों बहनों को तंग कर रहे, तुम ओम शांति में जाते हो इसलिए हुआ। देखो ओम शांति इतनी खराब हो गई कि इसलिए सुसाइड किया, लेकिन सबको पता है वहां कि बाप की और बेटे की बनती नहीं थी, उन्हें पता है परिवार वालों को। और बेटा इतना कष्ट पा रहा था तो मैंने कहा कुछ कहता तो होगा तुम्हें, उसकी माँ ने बात की, कहा कहता था मैं घुट घुट के जी रहा हूं। और कहा सुसाइड करने से पहले सवेरे ही मुझे कहा आज मैं ये घुटन सदा के लिए खत्म कर दूंगा, सुसाइड कर लिया। बाप ये सुनने को तैयार नहीं कि मेरी गलती से कुछ हुआ है, जिद्दी है बहुत, जो मैं कहूं वही होना चाहिए। अब देखो उसे ये पता नहीं कि ये उसका संस्कार कि जो मैं कहूं वही होना चाहिए इतना खतरनाक हो जाएगा। एक ही लड़का हो गया, वो भी 28 साल का, आप समझ सकते हैं माँ पर क्या बीतती हो। ज्ञान में है बेचारी, संभाला हुआ अपने को अच्छी तरह, बता रही थी कि हमने अपनी स्थिति अच्छी रखी है, परंतु ये कितना बड़ा पाप हो गया कि एक व्यक्ति एक आत्मा को दबाव में जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो काम आएंगे पुण्य और पाप की सूक्ष्म गति को पहचान के उससे बचना है, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा भी पाप होते हैं। ठीक कहा मैंने या नहीं? होते हैं, होते हैं। इसलिए बाबा ने कभी कहा था, 77 की मुरली से है, मैंने तभी नोट कर लिया था वो, तुम्हें 63 जन्मों के विकर्म विनाश करने में समय नहीं लगता, लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो सूक्ष्म विकर्म होते हैं उनको नष्ट करने में बहुत समय लगता है। हमारे कारण कोई डिस्टर्ब है, कोई परेशान है, हमारे बोल किसी को दुखी कर रहे हैं, कोई हर्ट हो रहा है हमारे व्यवहार से, कोई हमसे गलत चीजें सीख रहा है। उदाहरण के रूप में कमरे में 4 लोग सोते हैं, एक की आंख खुली है 4 बजे, मुंह निकाल के चादर से देखा, बाकी 3 तो सोए हुए हैं, मैं भी सो जाऊं। सूक्ष्म पाप, ये इतना सूक्ष्म है कि इस पे कभी कोई सोचता नहीं है, पर बाबा ने बताया हुआ है मुरलियों में। हमें फॉलो करके कोई अलबेला हो जाए ये भी पाप, तो बचेंगे तो हम सभी। अभी निर्भय बनने की बात है, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे हैं, तो एक एक क्वेश्चन पे एक एक क्लास हो जाए। मुक्तिदाता कैसे बने, मुक्तिदाता बनना बहुत बड़ी चीज पूछ ली ना। तो निर्भय बनने के लिए मैं थोड़े में उत्तर दूंगा। मुक्तिदाता वही बन सकेंगे जो स्वयं लंबे काल से मुक्त रहे होंगे, अनेक विकारों से भी मुक्त, आकर्षणों से भी मुक्त, देह भान से भी मुक्त, जो टॉपिक है जीवन मुक्त स्थिति में रहने वाले। जीवन मुक्त का अर्थ है जीवन में बहुत सारे चीजों से मुक्त, बहुत सुखी जीवन, बहुत सरल जीवन, आनंद से भरा, प्रेम से, खुशियों से भरा जीवन, ये जीवन मुक्त जीवन है। तो लंबा काल जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है, मुक्त रहे हैं, वो मुक्तिदाता बनेंगे। इसके लिए योग भी बहुत अच्छा चाहिए, परंतु निर्भय बनना परम आवश्यक हो जाएगा। कोरोना ने भी बहुतों को डराया है, बहुतों को डराया। अब दिल्ली में बहुत बढ़ गया, फिर से हमारे राजस्थान में बढ़ने लगा। पता नहीं सेवाएं कब बंद हो जाएं, ये जो थोड़ी शुरू हुई हैं, ऐसा हो गया। अब कल परसों से दिल्ली में बुरा हाल होने लगा, फिर से लॉकडाउन करने की नौबत आ गई। लॉकडाउन भी ऐसा कि घर से बाहर निकलना ही नहीं है। तो निर्भय, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कुछ संकल्पों को पक्का करेंगे, बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा मरती ही नहीं, ज्ञान अलग चीज है, वो तो शास्त्रों में भी ज्ञान है, गीता में भी लिखा हुआ दूसरे अध्याय में, आत्मा मरती नहीं, जलती नहीं, भीगती नहीं। लेकिन इसको इस तरह फीलिंग में लाना कि वो हमें मौत के भय से मुक्त कर दे, क्योंकि भय का बीज मौत का भय ही है। दूसरा, भय का बीज मोह भी होता है। अब जिन माताओं को कैंसर हो रहा है, वो अपने कैंसर से दुखी कम, पर इस संकल्प से दुखी ज्यादा हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा। और बात बहुत प्रैक्टिकल है, कैंसर बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, थोड़ा ही खोलता हूं मैं, उसमें ही बहुत आ जाते हैं। एक का आज ही था, ब्रेन में भी कैंसर हो गया और लीवर में भी। हम समझ सकते हैं कि इसमें मनुष्य बच नहीं सकता, लेकिन ये तो उसे नहीं हम कह सकते, लड़की ज्ञान में है कि तुम्हारी मां नहीं बचेगी, मैंने उसको विधि बताई, लेकिन कितना डरी हुई थी वो, अब मेरे बच्चों का क्या होगा। क्या याद रखेंगे निर्भय होने के लिए? हर एक आत्मा का अपना अपना सुंदर भाग्य भी है। माँ बाप चले जाते हैं छोटे बच्चों को छोड़ के, बच्चे बड़े बन जाते हैं, बहुत बड़े बन जाते हैं, ऐसे बहुत देखेंगे। इसलिए सब की संभाल करने वाला बाबा है, हम ये संकल्प भी रख लें। और सबको जाना है, सबको हिसाब किताब भी दे के जाना है, इसलिए इस बात से भी निर्भय। सभी एक बहुत अच्छा अभ्यास दो बार अवश्य कर लिया करें, मैंने क्लासेज में बहुत सिखाया इन दिनों, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये अभ्यास करके मेरे चारों शक्तियों का आभा मंडल है, ओरा घेरा, शक्तियों के घेरे के बीच में कुछ देर अपने को ले आए। इसको आप छोटी बात ना समझे, बहुत बड़ी बात है ये। कोरोना भी प्रवेश नहीं कर सकता इसमें, प्राकृतिक प्रकोप हो रहे हैं वो भी इस घेरे को तोड़ नहीं पाएंगे। भूकंप हो रहा हो, धरती पास में आके रुक जाएगा। बहुत बड़ी चीज है, इसको सभी बढ़ाएं, लेकिन बहुत विश्वास के साथ, जो ये समय हमें देखना है आगे, इसमें हमारे विश्वास की, मैं निश्चय नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास की बहुत परीक्षा होगी। निश्चय तो हमें है, बाबा है, ये सब जो मोटी बातें होता है, पर आत्मविश्वास कि जब बाबा हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा, ये विश्वास। जब हम भाग्यवान आत्माएं हैं तो हमें कोई कष्ट होगा ही नहीं, ये विश्वास। अपने में ये विश्वास कि कुछ भी जीवन में आएगा उसको आराम से सहन करके पार कर लेंगे, बहुत बड़े विश्वास की बात है। आज बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, कल थोड़ा सा मिलेगा, उसको ही आनंद से स्वीकार करेंगे। अब मैं सोचा करता हूँ कभी कभी, बेगरी पाठ चला यज्ञ में, स्वयं ब्रह्मा को भी भोजन नहीं मिला, जो भाग्य विधाता है। सोचो आप, जो भाग्य विधाता है वो भी भूखा रहता था। बाबा का उस टाइम का फोटो देखो, बाबा सूख गया था, बिल्कुल पतला, देखने से ही पता लगता है जिसको, जैसे किसी को भोजन नहीं मिलता ना लंबा काल, वो शरीर ऐसा हो जाता है। कैसी खेल ये बाबा का था, परीक्षाएं ले रहा था बाबा, पक्का करना था सबको, अग्नि परीक्षा थी। अपने में बहुत विश्वास हो, जो कुछ आएगा हम उसे पार करेंगे, हमसे पावरफुल कोई परिस्थिति नहीं है, ये नहीं ये, ये नहीं ये। बाबा की मुरली में आपने अभी अभी सुना, दमय वालों को भी छाछ पिला दी बाबा ने, तो छाछ पी के ठीक हो गए। कौन पिला रहा है जिसको ये विश्वास था, वो पी गए फटाफट, भगवान ने कहा है पिला दो सबको छाछ आधा आधा गिलास। लूज मोशन 70 को हुआ था, 70 लोगों को, दवाई थी नहीं, पैसे ही नहीं थे, गोली थोड़ी सी आई, थोड़ा थोड़ा पीस करके एक गोली के 3-4 बना के खिला दी, ठीक हो गए सब। विश्वास जिसको था कि कौन दे रहा है, ब्रह्मा बाबा ने खुद जाके दी थी अपने हाथ से, ठीक हो गए। तो ये अपने में विश्वास बहुत जरूरी होगा, और ये जरूरी होगा कि हम ये नहीं सोचेंगे, एक ही लाइन को पक्का कर देंगे सभी, कि जो हम सोचते हैं वही हो, होगा ही नहीं वो, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस, कोई एक्सपेक्टेशन काम नहीं करेगी। इसलिए जैसा समय आएगा उस अनुसार अपने को डालते चलें, लेकिन बहुत जरूरी होगा, जिस पे मैं सबका बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूं, मानसिक रूप से अपने को हेल्दी रखना है। कोरोना काल ने बहुतों में डिप्रेशन के बीज डाल दिए हैं, सब बचेंगे इससे, क्योंकि डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं होगी और बहुत बढ़ता जा रहा है। इसलिए अपने को खुश रखना है, मानसिक रूप से कमजोर नहीं होने देना है। अब ऐसे ऐसे सीन आ गए कि जिसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था, सारा दिन घर बैठे हैं, कितना दिन बैठेंगे, बैठे ही हैं, कोई काम नहीं, बच्चे घर में हैं, डिप्रेशन बढ़ा। मनुष्य पहाड़ दिल्ली में कल यही बात थी, वो टीवी वाले दिखा रहे थे बाजारों में भीड़, तो इंटरव्यू ले रही है वो रिपोर्टर, भाई क्यों आ गए, कहा घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे इसलिए घूमने आ गए हैं, किसी काम से नहीं आए। अब वो क्या कहे, उन्हें जरूरी हो गया है, घर में डिप्रेशन हो रहा है, बोरियत हो रही है, मन न जाने क्या क्या सोच रहा, जब फ्री है तो नेट पे रहेंगे सारा दिन, नेट माना नेट का दूसरा अर्थ भी होता ना जाल, जंजाल बना रहा है। तो अपने को बहुत खुश रखेंगे, बहुत हल्का रखना सीखेंगे, पावरफुल रखना सीखेंगे, और अगर ऐसा फ्री टाइम आगे मिल जाए, जिससे भी ज्यादा मिलेगा, उसको कैसे यूज करें, समय को कैसे अच्छी तरह व्यतीत करें, ये भी सीखना होगा, तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। 108 में आने का शॉर्टकट रास्ता, कितना शॉर्टकट चाहिए भाई, लॉन्ग कट तो हो गया, बहुत साल हो गए लोगों को करते करते, शॉर्टकट 8 घंटा योग करने लगो रोज, बस इससे शॉर्टकट तो कोई है नहीं। कोई सोचे बैठ के कर ले, बैठना नहीं है इसमें, 8 घंटे स्मृति स्वरूप स्थिति, इससे 2 धारणाएं और हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, संपूर्ण निर्विकारी और संपूर्ण निरंकारी, 3 ही वो बाबा की जो धारणा है, निराकार निर्विकारी निरंकारी, क्योंकि अध्यात्म का प्रत्यक्ष स्वरूप है अहंकार का त्याग। जिसका अहंकार नहीं गया वो अध्यात्म से भरपूर नहीं है। बहुत लोगों को मैं जरा बोल ही देना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों में ये बढ़ता है कहीं कहीं, पद पद मिले पद, जो पद की लालसा में चल रहे हैं उनको तो समझ लो ज्ञान और योग है ही नहीं, 0 पर हैं वो, तो उन्हें थोड़ा बहुत पद यहीं मिल जाएगा, बाकी विजय माला से वो बहुत दूर रहेंगे, उनके बस का नहीं है काम। जो बहुत त्यागी हैं, बाबा की ब्रह्मा बाबा की बातें भी हम सुन रहे हैं आजकल की मुरलियों में, साकार में, अव्यक्त में, जो बहुत त्यागी हैं, जिन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वही योगी बनते हैं, वही माला में आते हैं। अंतिम सीन देखने के लिए कौन सा अभ्यास चाहिए? अंतिम सीन एक दिन का नहीं होगा, अंतिम सीन 10 साल का है। शुरू हो गया ना, ये अंतिम सीन ही तो था। साक्षी स्थिति, साक्षीपन के लिए 2-4 बातें पक्की कर लें, लिख लें आप, क्योंकि ये चीजें एक दिन में पक्की नहीं होती, लंबा अभ्यास लगाना पड़ता है इनके लिए। जो कुछ हो रहा है एक्यूरेट है, सत्य है, यही होना है। लंबा समय इसकी प्रैक्टिस करेंगे। क्यों हो रहा है? बाबा मदद क्यों नहीं कर रहा है? बाबा क्यों नहीं रोक देता? बाबा रोकेगा थोड़ा है, उसको तो कराना है। भले ही बाबा कह देता है मैं थोड़ा ही कराता हूँ, ये तो आप ही होता है, लेकिन आप ही कोई चीज होती है, उसमें एक्टर तो कोई होता ही है ना, एक्ट तो किसी का है। तो बाबा, बाबा को तो हमारे लिए नई दुनिया रचनी है, इसलिए पुरानी को खत्म कराना है। साकार में बाबा बोल ही देता है तुम्हारे लिए ये विनाश करा देता हूँ। तो जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट, वही होना है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेटली चल रहा है, नो क्वेश्चन। ये चीजें साक्षी भाव लाएंगी। लंबा समय करना है। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजा रही है, सोचने की बात ही नहीं। सबकी बुद्धि अपनी, संस्कार अपने, और अब जाना है ये स्मृति। अभी जाने की धुन ब्राह्मण परिवार में नहीं है, अभी तो रहने की धुन है। जाने की भी धुन लगाएंगे तब, चलो तो समय भी लगवा देगा कि जाना है, और जाना है तो सब कुछ छोड़कर और सब कुछ लेकर, छोड़कर यहाँ का, लेकर बाबा से, फिर हमें जाना है। ये कुछ चीजें पक्की करते रहे, ड्रामा कल्याणकारी है। अभिषेक माता ने, जो गुजरात की माता का मैं उदाहरण दिया ना, जिसका 28 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, उसको ये प्रश्न बार बार सता रहा है कि ये कल्याणकारी कैसे हुआ, परेशान कर रहा है। मैं भी सोचने लगा कैसे हुआ भाई, बात तो बड़ी भारी है, किसी के लड़के ने सुसाइड कर लिया और हम कहें कल्याणकारी है। अब वो सोच तो रही है, तो मुझे अचानक ख्याल आया कि देखो, वो लड़का, वो आत्मा इस जीवन का आनंद नहीं ले पा रही थी, घुटन में जी रहा था। अब कल्याण यही है कि उसे एक अच्छा जन्म मिल जाएगा, और कम से कम 10 साल तो जीवन का आनंद लेगा ना बच्चा। तो ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है। ये कुछ बातें हैं जिनका सभी अभ्यास करेंगे। आप जानते हैं केवल अभ्यास करना है, तो अंतिम स्थिति के लिए तैयारी हो जाएगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन लेनी है। क्वेश्चन तो आपके बड़े सुंदर हैं, मुझे आनंद आ रहा है। नहीं तो समस्याओं के प्रश्न ही पूछते हैं लोग आजकल मेरे से, सोचते हैं मेरे पास समस्याओं समाधान के अलावा तो कुछ है नहीं शायद। तो सारा दिन वही फोन भी जितने आएंगे, हफ्ते में एक आएगा जो कुछ योग के लिए या कोई बहन किसी अच्छी चीज के लिए पूछेगी। चारों सब्जेक्ट, ज्ञान को अपना विवेक बनाना सीखें, विजडम, और वो तब बनता है। मैं सिंपल बात कह रहा हूं, ज्ञान मुरली से रोज 3 कोई सुंदर बातें याद रख लें, जो दिन में 2-4 बार याद कर लें, तो वो ज्ञान का सार हमारी बुद्धि में विवेक के रूप में समाता रहेगा। दूसरी चीज ज्ञान को अपना बल बनाना है। ज्ञान की एक एक बात हमारी स्थिति को अचल अडोल बनाने वाली हो जाए, ये सीखते चलना। देखो ज्ञान बल कैसे बनता है, मैं एक ही उदाहरण देता हूँ। आप किसी बात से चिंतित हो रहे हैं, सोच रहे हैं क्या होगा कैसे होगा, मन भारी हो रहा है, अचानक आपके सामने वो बोर्ड दिख जाता है, बाबा कह रहा है बच्चे जब भी मुश्किलात आए बाप को दिल से कहना मेरे बाबा मीठे बाबा जाओ मदद करो, तो बाबा भी बना हुआ है मदद करने के लिए। याद आते क्या हो जाए, वो सारा बोझ खत्म, एक बल मिल गया, बाबा है ना, बुलाओ बाबा को। इसको कहते हैं ज्ञान का बल, ज्ञान को यूज करना। तो ज्ञान को अपना विजडम भी बनाएंगे और अपनी शक्ति भी बनाएंगे, इसलिए ज्ञान की दो तीन बातें रोज कई बार याद करेंगे, ऐसा प्लान बना लो अपना, लिख कर ले जाओ, भूल जाए देख लिया करो उसे दिन में 5-7 बार। योग अभ्यास कर्म योग हमें सीख लेना चाहिए, योग की सबसे अच्छी कला कर्म योग ही है। बैठने वाले योगी कभी योगी नहीं बन पाए आज तक भी यज्ञ में, हमने बहुतों को देखा है। 2 बजे उठते थे योग करते थे, अभी भी हमारे यहाँ एक भाई है 2 बजे से 5 बजे तक योग करता, और 5 बजे रूम में आते ही लोगों से लड़ना शुरू कर देता है, है ये काम ऐसे क्यों किया है, बाथरूम में अब तक क्यों नहा रहे हैं। लोग उसे मजाक करते, योग क्या करके आए हो भाई, तुम्हें अब आदत पड़ गई सबको, उसका बुरा नहीं मानते। योग माना एक सुंदर सरल खुशनुमा जीवन, सहनशीलता से भरा हुआ जीवन। तो स्मृति, श्रेष्ठ स्मृति 5-7 रख लो और उनका अभ्यास कर्मों में करेंगे तो योगयुक्त जीवन। धारणाओं में सरलता, संतुष्ट, निरंकारिता, प्रेम सबसे, नफरत भाव नहीं, ईर्षा भाव नहीं, वैर भाव, ऐसी 5-7 बातें अपने पास रखो जिन्हें हमें ध्यान से धारण करना है, ध्यान देना है। कई लोगों में नफरत भाव बना ही रहता है, उससे क्या नुकसान होता है कि उनकी सूक्ष्म शक्तियां उससे नष्ट होती रहती हैं, आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती है। और सेवा, सेवा में तो एक ही चीज है, निष्काम भाव, सेवा की और बाबा को अर्पित। सेवा की कराने वाले ने कराई, नो ईगो, भूल जाएं करके, किसी को सुख देकर भी भूल जाएं, किसी की मदद करके कामना न रखें कि ये भी करे। सेवा का भी बड़ा गुह्य सब्जेक्ट है, तो चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन चारों सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलने का सार आप इस तरह ले लें, आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो, जीवन सरलता से भरपूर हो, जीवन में खुशी और नशा बहुत ज्यादा रहता हो, और योग युक्त जीवन बन जाए बस। तो चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स माने जाएंगे। बाबा का संदेश देने की सेवा अभी काफी बाकी है, अब ये पूर्ण होगी साक्षात्कार मूर्त बनने से, अभी तो वो सुंदर सीन संगम का बाकी है ना, जहां इस देव देवियों के साक्षात्कार होने लगेंगे और सेवा एक एक दिन में लाखों की संख्या बढ़ने लगेगी, लाखों एक एक दिन में, जैसा अब हो गया है। जो ज्ञान में अगर आप में से कोई बहुत पुराने हैं तो जानते होंगे, प्रदर्शनी आदि हम करते थे, कितनी बहस करते थे लोग, आत्मा ये नहीं वो नहीं, भगवान ये नहीं वो, कितनी बात। अब जो सुना रहे चुपचाप सुन रहे, हो रहा है या नहीं, कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। हमारे पास भी आते हैं लोग, आराम से जो सुना सुन लेते, ठीक है बस। तो सेवा का फाइनल स्वरूप होगा साक्षात्कार, मूर्त स्थिति, सब भागे चले आएंगे। और सेवा तो कोरोना काल में बहुत हो रही है। मैं आपको एक सूक्ष्म विधि बता देता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा। सवेरे श्याम कर लिया करें, श्याम का समय भी अमृत वेला ही है, 6 से 8 के बीच, 6 से 7.30। ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, चलते फिरते किया करें। और फिर बैठकर, अब मैं फरिश्ता आकाश में हूँ, बाबा की किरणें पड़ रही हैं, ये अभ्यास करके थोड़ी देर। संसार की आत्माओं को कुछ कहें अब आप ऊपर से, जैसे देवकुल की आत्माओं का आह्वान करें, बातें करें उनसे। देवकुल की आत्माएं तो आपके चार ओर हैं, हर जगह में कम से कम 20% आत्माएं देवकुल की हैं, 10% तो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। उन्हें संदेश दें, हे आत्माओं, अब सुन ले आप, बस ये लिखने की बात नहीं, जिसको तुम बुलाते थे वो अब तुम्हें बुला रहा है, आ जाओ। जिसे तुम ढूंढते आए वो आ गया है सत्य ज्ञान देने के लिए, तुम भी आ जाओ। जिसकी तुमने जन्म जन्म भक्ति की वो भक्ति का फल देने आ गया है, आकर ले लो। ऐसी बातें करो वहां से। और एक बहुत अच्छी फीलिंग जो मुझे आज से हुई है, प्योरली आज सवेरे से, मैं विघ्न विनाशक हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विघ्न विनाशक हूं। और 7 बार संकल्प करें, संसार की सभी आत्माओं के विघ्न नष्ट हो जाएं, सभी के विघ्न नष्ट हों। और अगर आपको किसी के करने हो, किसी परिवार के, आपके रिलेटिव के, आपके फ्रेंड्स के, उसको एक बार सामने लाकर, इनके सभी विघ्न नष्ट हो, ये निर्विघ्न हो, इनके विघ्न नष्ट हो, तो ये जो हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस हैं, सबसे पावरफुल शक्ति मन की शक्ति है, ये काम करने लगेंगे। आपको अनुभव होने लगेंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, और फिर आप ये रोज करने लगेंगे। शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा, व्यक्तिगत से शुरू करो, 1-2 के विघ्न नष्ट करने का, देवकुल की आत्माओं का आह्वान करने का, तो अच्छे अनुभव होंगे। कर्म भोग आए नहीं इसके लिए क्या करें, अशरीरी हो जाओ तो आएंगे भी तो आपको लगेगा नहीं कि आए, आए नहीं इसके लिए तो द्वापर युग से बहुत पुण्य करने पड़ेंगे, अब वापिस कैसे जाओगे, अब तो आगे ही बढ़ना है सतयुग की ओर। और हमारी मनोहर दादी हंसा करती थी, हंसाया करती थी, सभी पुराने पापी हैं हम, है या नहीं, जितने बड़े पदों पर होते हैं उनसे पाप भी ज्यादा ही होते हैं। मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूँ, लोग पूछते थे ना दादियों को ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दादियां द्वापर युग से कई बार सम्राट रही, राजा रही, अच्छे अच्छे युद्ध हुए, गलत आदेश दे दिया कहीं, प्रजा कष्ट पाने लगी। जो पाप कर्म एक साधारण व्यक्ति 2500 साल में भी नहीं कर सकता, वो राजा 1 दिन में कर बैठा, होगा या नहीं, तो उनके भी कर्म भी ज्यादा होते हैं, इसलिए तपस्या भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अगर कर्म योगी होंगे तो कर्म भोग की फीलिंग नहीं होगी। निरंतर योगी बनने की कुछ टिप्स, ये तो भाई ऐसे टॉपिक हैं, मैंने इन सब पर अभी कोरोना काल में मुझे भी टाइम मिला, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब मेरे नाम से, बीके सूरज, उसमें 2 टॉपिक आप सभी जरूर देख लें। एक है गहरी बातें, जिसमें 25 लेक्चर हैं, और पुरुषार्थ संबंधी जो कुछ किसी को चाहिए वो उसमें है, वो हमने उसी लक्ष्य से किया था। कि संपूर्ण पुरुषार्थ के बारे में जो क्वेश्चंस होते हैं या बाधाएं आती हैं गृहस्थ में समर्पण वालों को, उन सब का उत्तर उनमें है डिटेल। और दूसरा है हमने मन की शक्ति पर किया, सबकॉन्शियस माइंड पावर ऑफ अंतर मन की शक्ति, उसपे भी 25 लेक्चर हैं, वो 10-10 मिनट के हैं। उसका टॉपिक है श्रेष्ठ विचार सुखी जीवन का आधार। वो आप सब देखें, आपको बड़ा मजा आएगा। अपनी मन की शक्तियों का प्रयोग करें, आनंदित करने वाली वो चीजें हैं जो आज तक हमने प्रयोग कराए थे, वो भी उसमें सार रूप में आ गए हैं। तो निरंतर योग के लिए अमृत वेला बहुत अच्छा, और 8 कोई अभ्यास आप चुन लें अपने लिए, और बहुत अच्छी एक विधि अपनाएं। मैं एक सरल विधि आपके सामने रखता हूं, जितने दिन के काम आप कर, दिन में जितने तरह के काम आपको हैं उनकी एक लिस्ट बना लो। मान लो बहनों को घर की सफाई करनी है, या कपड़े धोने हैं, या भोजन बनाना, सब्जी काटनी है, और कुछ काम आपको करने हैं, उनकी एक लिस्ट बना के अलग अलग कार्यों में अलग अलग अभ्यास फिक्स कर दो, लिख कर कर लो। और जब वो काम शुरू करो बस उसको याद करो, किसी कर्म में बाबा का आह्वान, किसी कर्म में कोई स्वमान, ऐसे अलग अलग, तो योग का चार्ट तेजी से बढ़ने लगेगा, बहुत अच्छा होगा। और योग अच्छा होते ही क्या होगा, परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगी, मन शांत परिस्थितियां शांत, ये सिद्धांत सभी को याद रखना है। स्वस्थिति श्रेष्ठ परिस्थिति नष्ट, आप ही है, ऑटोमेटिकली है ये मन के वाइब्रेशंस के द्वारा। ये कुछ क्वेश्चंस थे, हो सकता है कोई रह भी गया हो, मेरे हाथ से स्लिप हो गया हो। सभी अपनी स्थिति को पूरा बंधन मुक्त बनाएंगे, और बंधन मुक्त बनने का अभी सभी ने एक मुरली सुन ली होगी कर्मातीत पर संडे को, उसे थोड़ा सा पढ़ लिया करें 2-4-5-7-10 बार, कई बार थोड़ा सा ध्यान पूर्वक क्या कह रहा है भगवान उसमें, बंधन मुक्त की कितनी बातें कही थी, बीमारियों के प्रभाव से भी मुक्त, कर्म भोग तो आएंगे लेकिन वो हमें परेशान न कर दें, संस्कारों के बंधन से भी मुक्त, संबंधों में भी मुक्त अवस्था। बड़ी गहरी बात हो जाती है, अब एक माँ को बच्चे हैं उनकी चिंता उसे होती है, बाप को कमाने की चिंता है, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन बंधन मुक्त बनना एक ही अभ्यास करना है, कुछ भी सोचे बिना, मैं आत्मा और ये मेरा देह, सबसे पहला और सरल अभ्यास। अगर कोई इस अभ्यास की धुन लगा दे तो देह के बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे, और बाकी सभी बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ जाएंगे। बाबा ने इशारा दिया, व्यक्त मुरली पीछे आ गई है, ये बांधेलियों को कहा, अगर देह के बंधन से मुक्त होते जाओ तो इस शारीरिक बंधन फिजिकल बंधन खत्म हो जाएंगे। तो ये अभ्यास बहुत बढ़ाना है सबको, अशरीरीपन का। और सभी ये भी याद रखें, जितना हम देह से न्यारे उतने ही सबके प्यारे, आपको सब प्यार करेंगे दुनिया में, और ऐसे ही स्वान में स्थित रहने से सब आपका सम्मान करेंगे। परिवारों में समस्या होती है ना ज्ञान में चलने से, लोग थोड़ी टेढ़ी नजर से देखते हैं। देह से न्यारेपन का अभ्यास करो, सब प्यार भरी नजर से देखेंगे, समाज सारा आपको सम्मान देगा। अगर स्वमान का अभ्यास बहुत अच्छा है, इन चीजों पे बहुत ध्यान देना है, तो सभी, मैं एक बात बहुत दिनों से क्लास में कहता आया हूं, मैंने ये सब किया है इसलिए कहता हूं उससे बहुत फायदा होगा। मैं तो हर वर्ष अव्यक्त मुरली जब सीजन पूरा होता था ना, अभी तो सीजन ये होता था अक्टूबर से और मार्च तक, पहले और समय होता था मार्च अप्रैल, मार्च से शुरू कर देते थे अप्रैल मई जून, कभी अप्रैल मई जून, कभी दिवाली के आसपास, तो मैं सभी अव्यक्त मुरलियों की जो मुख्य बातें थी वो अलग से लिखता था मोटे अक्षरों में। वो मेरे लिए बहुत बड़ा टॉनिक रहा जीवन भर, इसलिए मैं वो मुरलियां कोई बहुत पढ़ता नहीं हूं, लेकिन वो मुझे याद हो गई क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिस में बहुत लाई। अब जिस चीज को हम 10 साल प्रैक्टिस में लाएंगे वो तो याद हो ही जाती है। इसलिए मैंने कहा मुरलियों से 25 बातें अपने लिए अलग से अवश्य लिखें सभी, जो आपकी स्थिति को अचल डोल बनाए, जो आपको बहुत प्रसन्न रखे। जीवन में छोटी मोटी बात आ जाए वो पढ़ ली 25 बातें और सेकंड में फ्रेश हो गए। ये सबको करना चाहिए। योगी जीवन बनाने के लिए भी ज्ञान का बल बहुत आवश्यक होता है। मन को व्यर्थ से मुक्त रखने के लिए भी ज्ञान के बल की ही जरूरत है। पसंद है ये बात, कर लेना आप। एक दिन में लिखने की जरूरत नहीं, भले एक मास में लिखो, 25 से ज्यादा लिखो। मैं तो आपको कहा ना, मैं हर साल लिखी है, फिर वो डायरी कोई ना कोई ले जाता था। एक बार तो मेरी एक अच्छी डायरी की चोरी भी कर ली किसी ने, मेरे से ले गया। मैंने कहा भाई ईमानदारी से लौटा देना, परिचय था नहीं, लेके चला गया। उसने सोचा बना बनाया माल मिल रहा है, ये चोरी तो चोरी नहीं मानी जाएगी। एक बार तो पांडव भवन में मेरी एक बड़ी डायरी, एक सरदार आया था सेवा में, लिया के मैं लिख के दे देता हूँ। अब जा रहा था तो ले जा रहा था तो भाई था, प्रेम भाई है भी नीचे है, उसने कहा ये सरदार जा रहा है, मैंने सुना था तुम्हारी डायरी ले जा रहा। उसने उसके बैग नीचे उतरवाई, डायरी निकाल के मुझे दी। ज्ञान खजाना है, संपन्नता एक शब्द बोलते हैं ना बाबा, संपन्न बनो संपूर्ण बनो, इस पे बहुत ध्यान देंगे। संपन्न बनना है सब खजानों में, उसमें पहला खजाना ज्ञान का खजाना। ज्ञान जिसको स्वदर्शन चक्र भी बाबा कहते हैं, ज्ञान का खजाना संपन्न हो हमारे पास, वो हमारे चिंतन में रहे, तो बाकी सब चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मैं आपको याद दिला दूं, देखो हर चीज पर हमें बाबा की आज्ञाओं का पालन करना है ना, बाबा से हमारा प्यार है उसकी निशानी ही ये है। अभी बाबा ने कहा 4 दिन पहले का होगा कि जब सो तो किस चिंतन में सो, तो तुम्हारे स्वप्न भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, हो सकता है रात को तुम्हें साक्षात्कार हो। तो मैं उस दिन से चालू कर दी, करते तो थे लेकिन अब और ध्यान चला गया कि बाबा कितनी अच्छी विधि सिखा रहे हैं, सब करने लगे। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली मिस न करो, क्योंकि उनमें गहरी से गहरी बातें आती रहती हैं। अब मुरली ये हमारे पास केवल 5 साल की हैं और रिपीट हो रही हैं। अब मैं तो 11वीं बार सुन रहा हूं मधुबन में इन मुरलियों को, फिर भी नई बातें मिल रही हैं। मैं सोचा करता हूँ ये तो हमने सब सुनी है, ये बात कैसे मिस हो गई थी। अब सुनो आप एक सुंदर बात, वरदान की है जो अभी अभी आई है शायद 10-15 दिन पहले, और बहुत सुंदर है, आपको देखो कैसी लगेगी। बाबा ने कहा जो बच्चे बहुत अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त कर लेंगे, इच्छा अनुसार देह छोड़ेंगे। याद है आपको कुछ? आइए अभी, बहुत सुंदर बात है ना, हमें निर्भय बनाने वाली बात कि हमारा विनाश ऐसे नहीं, हम बिल्डिंग में बिल्डिंग गिर गई और हम भी दबे हुए हैं, इस तरह हमारा विनाश नहीं होगा। किसने गोली मार दी हमें, कहीं हमारा एक्सीडेंट हो गया, ये विनाश हमारा नहीं, हम स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। तो ऐसी बातों को हमें नोट करके अभ्यास शुरू कर देना है तो हमारा जीवन बहुत डिवाइन होता जाएगा। और जो सुंदर प्रश्न आपने पूछे उनके उत्तर में ये एक बात भी आप जोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबको अपने जीवन को जीवन मुक्त बनाना है, बहुत सुखी हो जाएं सभी। टॉपिक तो ये बहुत बड़ा है पर मैं एक ही बात आपको अंडरलाइन कराना चाहता हूं, बहुत सुखी हो जाएं। हुए नहीं है बाबा के बच्चे भी सुखी, कोई टकराव के कारण सुखों से दूर है, कोई अपने अहम के कारण सुखों से दूर है, कोई अपने निगेटिविटी के कारण सुखों से दूर है, कोई दूसरों को देख रहा है इसलिए सुखों से दूर है। सुखी होना अपने हाथ में, एक बार भगवान मिलता है केवल हमें। 5000 साल की लंबी यात्रा, एक बार प्रभु मिलन, उसे हम कैसे मनाते हैं सब चिंतन करें यहाँ। एक बार जो चीज मिलती है 5000 साल में, और इस देह के छोड़ने के साथ ही वो पूर्ण हो जाएगी, हम उसका आनंद कितना ले रहे हैं, क्या हमें उसकी वैल्यू है, क्या हमें ये संकल्प है कि बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लें, सुखी कर दें अपने को। मैं एक उदाहरण कई बार सुनाया छोटी क्लासेज में, आपने सुना हो तो। मैं 18 जनवरी के दिन यही किचन में था नीचे, तो बैठा था। 18 जनवरी का दिन तो आप जानते ही हैं, मन परमानंद में था सवेरे से, 11 बजे का समय था, मैं बैठा था। अब मुझे ज्यादा काम तो कुछ करना नहीं होता, बैठना ही होता जाके, सब काम करने वाले हैं ही। परमानंद की स्थिति थी मेरी। एक भाई आ गया, पुराना, हमसे पुराना है, एक ही जिंदा है वो जो हमसे पुराना है बेचारा। तो आया तो मैंने कुर्सी रखी थी, मैंने कहा बैठो भाई, बैठ गया। उसने बैठते ही अपनी राम कथा शुरू कर दी, फलाना व्यक्ति मुझे बहुत तंग करता है। अब मेरे में तो सुनने की वो नहीं थी, उस दिन अवॉइड तो मैं किया। फिर मैं 3 मिनट के बाद तो उठ ही गया कुछ काम देखने के लिए, लेकिन मैंने ये देखा, मैंने उस बात पे बहुत अच्छा चिंतन भी किया, सेल्फ ऑब्जर्वेशन हुआ और एक गहरी बात समझ में आई। मुझे उसकी बात में रुचि नहीं थी, ऐसा नहीं मैं कोई इंटरेस्ट से सुन रहा हूं, मेरे को तो पहले ही शब्द उसका भारी लगा। मैंने कहा तो मैंने गलती कर दी उसको बैठा के, अब बुजुर्ग भी है, अभी 90 का हो गया है वो, तब 87 का होगा। लेकिन उसकी व्यर्थ की बात ने मेरे आनंद को खत्म कर दिया। अब मैं सोचने लगा, जो लोग व्यर्थ में जी पूरा दिन बिताते हैं उनका क्या हाल होता होगा, उनको तो पता ही नहीं सुख क्या होता है, अलौकिक सुख। तो फिर मुझे शाम को क्लास तो कराना ही होता है। अभी मेरी फिर से वो स्थिति तभी बनी जब मैं सोकर फिर उठा। मैं 3 बजे उठ जाता हूँ दिन में भी, क्योंकि फिर जाना होता है क्लास। फिर वो स्थिति बन गई, लेकिन वो 3 मिनट का अनिच्छा पूर्वक सुनने से भी स्थिति पर असर आया। इच्छा पूर्वक इंटरेस्ट से सुनने से तो खेल ही बिगड़ जाए, अनिच्छा पूर्वक सुना और ऐसे सुना कि जैसे मैंने कुछ सुना भी नहीं, फिर भी आनंद लोप हो गया। आनंद कितनी गहरी चीज है, परम आनंद जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। सभी को अपने को सुखी करना है, सोच लो कैसे करेंगे, क्या क्या छोड़ दें जो हम सुखी हो जाएं, स्वर्ग से भी अच्छा लगे अपना जीवन। इतना ईश्वरीय नशा, देखो सुख किस किस में है, ईश्वरीय नशा रहे, स्वमान अच्छा रहे, हमारे विचार बहुत न केवल पॉजिटिव लेकिन जिसे कहते हैं मोस्ट एलिवेटेड थिंकिंग, बहुत ऊंचे विचार हों, सबके लिए हमारी भावनाएं बहुत श्रेष्ठ और पॉजिटिव हो गई हो, तब जीवन सुखों से भरता है। बदले लेने की भावना और नफरत, इससे पूरी तरह मुक्त हो जाएं हम सब। नफरत बिल्कुल खत्म, चेक कर लें आप यहाँ, सबसे प्रेम की दृष्टि, नफरत नहीं। इस बार इस खाली समय में मुझे एक सुंदर अवसर मिला, 3 मास से मिला होगा, मैं उसे सुंदर अवसर ही मानता हूँ। तो एक भाई ने मुझे कहा कि भाई इसमें टीवी में श्री कृष्णा सीरियल बहुत सुंदर आ रहा है। अब मैं तो कभी देखो देखा नहीं था सच्ची बात, क्योंकि टाइम ऐसा होता नहीं था, रोज रात को कहीं ना कहीं क्लास, वो आता है 9 से 10। तो मैंने नंबर पूछा कौन से उस पे आता है चैनल पे, उसने बताया, मैंने देखना शुरू किया। उसमें श्री कृष्ण की सारी बातें हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान के अवतार के रूप में दिखाया है ना भारत में। तो उससे मुझे बहुत चीजें सुनकर ये समझ में आ गया कि शिव बाबा क्या है। कल भी रात जो लास्ट में सुना महाभारत का सीन था, और कल लास्ट था उसका, तो जब द्रौपदी के सारे पुत्र मार दिए गए और उसका भाई दोनों मार दिए गए और वो विलाप कर रही कि युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन हमारा भी सब समाप्त हो गया, 5 पांडवों के अलावा कुछ नहीं बचा, गर्भ में परीक्षित था बस। तो श्री कृष्ण से बता रहे हैं, वो श्री रोते हुए श्री कृष्ण को कह रही है, आप भगवान हैं, आप मेरे भाई भी हैं, आपने मेरे पुत्रों भाइयों को क्यों नहीं बचाया। ये डायलॉग बहुत ही सुंदर थे श्री कृष्ण के, कि यूं तो मेरे हाथ में है सब कुछ, मैं किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता हूं, परंतु सोचो द्रौपदी, लाखों योद्धा मरे हैं, वो भी तो किसी के पुत्र थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे, किसी के बच्चे थे। अगर मैं तुम्हारे पुत्रों के साथ ही पक्षपात करता तो क्या मैं धर्म का रक्षक माना जाता। मेरे हाथ में है सब कुछ और मुझे पता भी था, इसलिए वो पांडवों को उस रात दूर ले गया था। तो शिव बाबा की कई चीजें मैंने सुनी हुई हैं। मुंबई में बाबा गए थे और वहां मछली पकड़ने वाले ज्ञान में आने लगे। उन्होंने प्रश्न किया, बाबा हमारा धंधा तो पाप का धंधा है, तो हम ये छोड़ें क्या करें। आपने नहीं सुनी होगी ये बात, बाबा ने उनको कहा था कि नहीं, ये तुम्हारा पाप नहीं, ये तो तुम्हारा धंधा है। और उस मुरली में लास्ट में बड़े नशे से भगवान ने बोला था, मैं कई बार देखा है भगवान को भी नशे में, मेरे हाथ में सब कुछ है, मैं जिसको चाहूं गरीब बनाऊं, जिसको चाहूं साहूकार बना दूं। भले कर्म गति है, पुरुषार्थ की गति है, पर मैंने अपने जीवन में ये पाया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ भी बिना बाबा की मदद के होता नहीं है, होता नहीं है, मैंने अपने से देख लिया। हालांकि मुझे पुरुषार्थ में संपूर्ण सफलता है, लेकिन मेरे पुरुषार्थ की शुरुआत बाबा ने कराई थी 69 अप्रैल में, और अब भी जितनी चीजें होती हैं वो मुझे स्पष्ट आभास होता है कि बिना बाबा की शक्तियों के। जब तक वो कराना न चाहे होता नहीं है। तो बाबा करण करावनहार है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा श्री कृष्ण की, कुछ मिस भी हुई, कुछ देखी सारा मैं नहीं देख पाया। तो भगवान क्या है इसको जानना इतना सहज काम नहीं है। मैंने पीछे भी क्लास में बात कही, आपने सुनी है, बाबा ने कहा है जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम भी संपूर्ण बन जाओगे। तो उसको जानना इतना सहज काम नहीं, मोटी बात नहीं कि छह बातों में हमने उसको जान लिया है नाम रूप देश काल, वो तो परिचय हुआ है केवल। तो बाबा बहुत मदद कर रहा है हमको, हम उसकी मदद के पात्र बन जाएं, पात्र बन जाएं, तो जीवन सुखों से भरपूर हो जाएगा। आने वाले समय निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, उसमें हम और शक्तिशाली बनकर उभरें, ऐसा ज्ञान का बल हमें इकट्ठा करना है। तो सभी इन बातों पे बहुत चिंतन करेंगे और अपने को मुक्त करेंगे। यहीं ओम शांति। अनुभव जरूर सुना देना चाहता हूँ बाबा की मदद का। मेरे को जरा चोट लग गई थी तो मैं आ नहीं सकता था क्लास कराने। पीछे भी राजस्थान का ग्रुप आया था तो बहन जी ने बहुत फोन किया, मुझे बड़ी लज्जा आती थी ना करते हुए, लेकिन करना पड़ा क्योंकि बैक में नीचे चोट लग गई बहुत ज्यादा। और मैं आपको अनुभव सुना रहा हूँ, मैं सीढ़ी से फिसल के नीचे गिरा विद इन नो टाइम, एक सेकंड में ये काम हो गया। और जब मैं नीचे गिरा जोर से चोट लगी, मेरे मुख से पहली बार निकला होगा जो मैं निकालता नहीं मुख से, बाबा बाबा बाबा, जैसे वो पेन ना मुख के द्वारा बाहर चला गया। ये साइकोलॉजी भी है। और आठ बार निकला मेरे मुख से, चोट तो बहुत लगी, यहां लगी यहां लगी यहां लगी और नीचे बहुत लग गई। और आधे मिनट के बाद मैं वहीं लेट गया और आधे मिनट के बाद मुझे आभास हुआ जैसे बाबा ने बहुत मदद कर दी, नहीं तो सिर फूटता मेरा, वो जगह ही ऐसी थी। और मैं बाबा को शुक्रिया कर दिया बहुत ज्यादा कि आपने मुझे बचाया, कुछ हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि मैं एक मिनट में उठ गया और चलने लगा। मुझे पता लगा कुछ टूटा फूटा नहीं है, ठीक ठाक हूँ मैं, चोट लगी हिसाब पूरा हो गया। मैंने बाबा से मैसेज भी मंगाया और यही था कि बाबा ने सूली से कांटा कर दिया है, बाबा ने मुझे कहा रेस्ट करना है कुछ दिन और कर्म योग करना है सब कुछ। कर्म योग सबसे अच्छी कला है, वो हमारे पास है ही। तो आज भी अभी बहन जी ने आज कल कहा था, पूछा कि आएंगे, मैंने कह दिया था आऊंगा, हालांकि मेरे में दम नहीं था, मुझे पता था कि मुझे बैठ के ऊपर से नीचे आना है, दर्द बढ़ जाएगा। सो मैं यहाँ आया और मेरा दर्द सचमुच बढ़ गया बहुत। मैंने बाबा कहा अब तुम्हें ही करना सब कुछ, तो मैं आपके सामने बैठा हूँ, घंटे से भी ज्यादा हो गया मेरा दर्द ठीक हो गया जो बड़ा हुआ था। तो आपको धन्यवाद और बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो मैं आ नहीं सकता था। अभी दर्द भी ठीक हो गया है और सब कुछ ठीक हो जाएगा ऐसा लगता है। तो बाबा बहुत मदद कर रहा है, हमें उसकी मदद के पात्र बनना है, ताकि जब हम गिरने लगे जैसे मैं गिरा तो बाबा का सिंहासन हिल जाए और वो उठा ले हाथों में। यही हुआ मेरे साथ और यही बहुतों के साथ होने वाला है कि वो हाथों में उठा लेगा और कुछ होने ही नहीं देगा अपने अमूल्य रत्नों को। तो बाबा को शुक्रिया करते हुए अब हम समाप्त करेंगे।
फलक से हम